ओम शांति। आप सभी का हृदय से स्वागत अपने ही घर में। डीप साइलेंस की चार दिन की गहरी भट्टी और उसका समापन नहीं, समापन है आज। कौन कौन कहता है आज समापन है? एक दो हाथ उठ रहे हैं। समापन नहीं लेकिन शुरुआत है। अभी तो साइलेंस में जाने की हमने शुरुआत की है। इसकी गहराई का गहन और अनुभव करते हुए हमें शिखर की ओर चलना है। प्यारे बाबा ने हम सबको आकर शुरुआत से ही यही सिखाया कि तुम्हें टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में चलना है। यही हमारा लक्ष्य है और पिछले चार दिनों से आप सब इसकी गहन अनुभूति कर रहे हैं और ज्ञान सरोवर में भी आपने पूरा ही साइलेंस वर्ल्ड बना दिया है। इसके लिए एक बार जोरदार तालियां अपने लिए ही बजा लीजिए, क्योंकि आपके वाइब्रेशन कहीं पे भी आप हैं उसकी सुंदर अनुभूति सभी को करा रहे हैं और सभी अनुभव कर रहे हैं कि सचमुच साइलेंस कितना हम सबके लिए आवश्यक है। बाबा ने तो कहा ही है कि वाणी के तीर बहुत चला लिए, अब साइलेंस के तीर चलाओ। और प्रत्यक्षता भी साइलेंस की शक्ति से ही होगी। कितनी सारी गहन बातें बाबा ने साइलेंस की शक्ति के लिए कही हैं और पिछले चार दिनों से आपने हमारे सभी बड़ों से, अनुभवियों से बहुत कुछ इसके बारे में सुना है। मुझे बाबा के महावाक्य याद रहते हैं इसके विषय में। बाबा ने कहा है कि साइलेंस की शक्ति से ही तुम दूर बैठी हुई आत्माओं को भी ऐसे संदेश दे सकते हो जैसे वो सम्मुख बैठे हो। साइलेंस की शक्ति से ही तुम मानसिक रोगों से ग्रस्त आत्माओं को भी ठीक कर सकते हो। साइलेंस की शक्ति ही साइंस पर विजय का आधार बनेगी। साइलेंस की शक्ति से ही तुम महात्मा धर्मात्मा बन जाते हो, भटकती हुई आत्माओं को भटकने से छुड़ा देते हो। तो कितनी गहराई है इसमें, इसीलिए अब हमें भीतर की ओर चलना है। कहते हैं ना, मैं भीतर गया और मैं भी तर गया। तो आज के इस अंतिम सत्र के लिए आप सभी यहाँ जो बैठे हैं, आपके मन में जो भी प्रश्न रह गए हैं, रहे सहे प्रश्न, उन सब का निदान करने के लिए, उनका उत्तर देने के लिए और उससे भी ज्यादा अपनी नजरों से निहाल करने और अपनी आशीषों से आप सभी को सजाने संवारने के लिए हमारे बीच परम आदरणीय दीदी हमारे बीच पधार रही है। साथ ही हमारे आदरणीय गोकुल भाई जी और डॉक्टर प्रताप मेहता जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए। डीप साइलेंस की जो प्रतिमूर्तियां हैं वो आज के अंतिम सत्र में हमारे सम्मुख हैं, एक छाप लगाने के लिए कि गहन शांति की इस अनुभूति को सदा अपने जीवन में साथ लेकर के हम चलें। परम आदरणीय सुरेश दीदी जी, डॉक्टर प्रताप मिथा जी और आदरणीय गोकुल भाई जी हमारे सम्मुख हैं। हम एक हाथ की ताली से हृदय से बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपनी त्रिमूर्ति बड़ी देवी और भाइयों का। और बैठेंगे अपने स्थान पर और चलें शांति के सागर प्यारे बाबा का आह्वान करके आज के सत्र की शुरुआत करते हैं। तो वक्त कम, मंजिल दूर, हमारे कदमों में रफ्तार कैसे आए उसके लिए ही हमारे बड़े हमारे बीच हैं कि कैसे हमारी रफ्तार बढ़े, कैसे हम उड़ान भरें और कैसे मंजिल की ओर पहुंचें। मैं अपनी बहनों से अनुरोध करूंगा कि हमारी आदरणीय दीदी, आदरणीय डॉक्टर प्रताप जी और गोकुल भाई जी का तिलक और बैज से स्वागत करेंगी आज के इस सत्र में। हमारी सुंदर परंपरा जो हम सबको आपसे स्नेह सम्मान की डोर में बांधती है, पिछले चार दिनों की गहन मनन चिंतन और यात्रा के पश्चात आप सब ने कुछ प्रश्न हम तक पहुंचाए हैं। उन प्रश्नों का निदान हम अपने दीदी और बड़े भाइयों से प्राप्त करेंगे। आप सभी भली भांति परिचित हैं हमारी परम आदरणीय दीदी, जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, यूरोपियन कंट्रीज में जो ब्रह्मा कुमारीज के केंद्र हैं, साथ ही ज्ञान सरोवर की आप डायरेक्टर, और सबसे बड़ी बात ज्ञान योग की ऐसी अनुभवी जिनका सानिध्य हम सबके लिए सौभाग्य है। बाबा जिन्हें ज्ञान की बुलबुल कह करके संबोधित किया करते थे, और मम्मा के सम्मुख ही समर्पित होने वाली दीदी पहली कुमारी हैं भारतवर्ष की, तो हम जोरदार तालियां अपनी दीदी के लिए बजाएं। डॉक्टर प्रताप जी से भी हम भली भांति परिचित हैं, हम सबके वरिष्ठ भ्राता, न केवल आप ग्लोबल हॉस्पिटल का प्रारंभ से ही सुचारू रूप से संचालन कर रहे हैं एक डायरेक्टर के रूप में, लेकिन अभी बाबा ने आपको एक बहुत बड़ी कैसी भी स्थान और सेवा प्रदान की है, जो पूरे यज्ञ की सुंदर देखभाल करने के भी आप निमित्त बने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल ऑफ ब्रह्मा कुमारीज। लेकिन उससे भी ज्यादा मैं हमेशा उन्हें प्रेम से कहता हूँ कि आप मास्टर धन्वंतरी हैं, जो हम सब के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। आप बैठे हैं तो हम सब निश्चिंत रहते हैं, और साथ ही हमारे अति आदरणीय गोकुल भाई जी, जो बाबा कहते हैं ना कि मैं करता सब कुछ हूँ लेकिन दिखाई नहीं देता, आप भी करते सब कुछ हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, राइट? ऐसा है ना, कितने शांत सरल मृदुभाषी और पद्मों के बीच रहते हुए पद्म समान स्थिति में रहते हैं। लोग धन को माया कहते हैं, लेकिन आप माया के बीच रहते हुए मायापति हैं, लक्ष्मी के बीच रहते हुए लक्ष्मीपति हैं। कैसे उसके बीच रहते हुए न्यारे प्यारे रहा जाए, कैसे ट्रस्टी बन के रहा जाए, उसके आप जीते जागते हम सबके बीच उदाहरण हैं। तो एक बार पुनः हम करतल ध्वनि से तीनों का ही हृदय से स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं। और प्रथम प्रश्न मैं दीदी की ओर ही लिए चलता हूँ आप सभी को। दीदी, पिछले चार दिनों से बहुत डीप साइलेंस भट्टी का सभी अनुभव कर रहे हैं, तो दीदी एक मन में हमेशा सभी के एक प्रश्न होता है जो बाबा लगातार कई मुरलियों में कहते हैं, एक साइलेंस, एक डीप साइलेंस, एक डेड साइलेंस और स्वीट साइलेंस, तो इन सभी में क्या अंतर है दीदी, क्या स्टेजेस हैं और इनमें डिफरेंस क्या है?
ओम शांति, वाह, ओम शांति, ओम प्रेम। और आज की मुरली के अनुसार बेफिकर बादशाह, जिसको ना फिकर है पर फखुर है, फखुर है, खुशी है, नशा है, पर एक और ऊंची चीज है, वो है आनंद। आनंद क्यों समझ में आ गया? फिकर करने वाला फकीर है, टोकरी उठाने वाला भारी टोकरी उठाता है, ठोकर खाता है, राइट? तो इसीलिए मैं क्यों नहीं नशे में रहूं, फिकर से फारिग, बेपरवाह बादशाह पर नहीं, सब बातों का नशा रखने वाला, निश्चय वाला। तो आपके प्रश्न का जवाब अभी कि जब ये आत्मा को अंदर संतुष्टता होती है, संतुष्ट जो है वो उसके पास क्यों क्या का क्वेश्चन अंदर नहीं उठता है, शांत है, साइलेंट है। परंतु ये ईश्वरीय योग के संबंधित की बात, योग में डीप साइलेंस क्या है, यानी मन माना भाव, मन मगन है, और जो जैसे बाबा ने आज कहा कि बिंदु स्वरूप, और कई बारी बोला है, तो फुल स्टॉप। मन आनंदित होते हुए भी, यानी मनन शक्ति का अभ्यास होते हुए भी, जो क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर का अनुभव कर रहे हैं। मतलब क्या है कि रत्नों को एंजॉय कर रहे हैं, जैसे सागर, बिल्कुल सागर वाली मिसाल ले लो, ऊपर लहरें हैं, तैरने वाला तैरता है, बहुत बड़ी लहर होती है तो वो जो सरफेस वाले जो गेम्स होते हैं, मतलब उनका, वो उछलते हैं नीचे जाते हैं, उछलते हैं नीचे जाते हैं, लगता है डूब न जावे, पर वो डूबते नहीं है। जितनी बड़ी लहर होती है उतना ही उनको आनंद आता है। तो वो तो स्टेज हुई बाबा के संबंध के अनुभूति में हम उछलते हैं, बेहद के नशे में रहते हैं। परंतु डीप का मतलब यह है कि संकल्प, एक ही संकल्प में मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, संतुष्ट हूं, निश्चिंत हूं और बाबा के पास परम धाम में, नीचे होते भी सागर में होते हुए भी उतनी ऊंचाई में हूं। परम धाम की शांति ऊंची से ऊंची है, परम है, सुप्रीम है। परंतु डीप क्यों है? क्योंकि मैं उस प्रेम के सागर में, आनंद के सागर में, शांति के सागर में डूबी हुई हूं। वो अंदर खाली बाहर की खुशी नहीं है, अंदर हृदय में, जैसे कि अब मन तो, मन का संकल्प इतना संतुष्ट और खुश है तो डीप साइलेंस है। उसी स्टेज में ही आत्मा को वो जो आनंद आ रहा है वो टेस्ट ले रही, तो स्वीट साइलेंस है। उछलने वाली जो है फिर भी कोई ना कोई क्वेश्चन उठा उछलता रहेगा, परंतु इसमें जैसे कि मुख में आप देखो कुछ डाल दो मीठा, च्यो कर रहे हो तो मुख बोलता नहीं है, परंतु मैं चूस रही हूँ, यानी वो अंदर रस ले रही हूँ, मानो गुड़ खा रही हूँ, मिश्री खा रही हूँ। तो मिश्री का जो रस है ना, वो अंदर जा रहा है। तो ये आत्मा के मन के अंदर वो मन मन अभाव की स्टेज है, शांत भी है, शीतल भी है, ऊपर भी कनेक्टेड है। क्यों? कि मेरे यानी सुप्रीम सोल के साथ मैं कनेक्टेड हूं। फिर डीप साइलेंस, स्वीट साइलेंस पर आधार है लवफुल साइलेंस। और जब बिल्कुल उसमें मतलब आत्मा न्यारी हो गई, मुझे पता है मैं तो संकल्प भी कर रही हूँ, सुख भी ले रही हूँ, आनंद भी ले रही हूँ, फिर डेड साइलेंस का मतलब क्या है? कि ये जो बाहर की कर्म इंद्रियां हैं वो कोई चीज याद नहीं आ रही है। आंखें कुछ दे, वैसे वैसे खाली प्रेम के सागर में है ना, तो कोई ना कोई चीज सीन सामने आएगा, कोई पॉइंट सामने आएगी, कान भी कुछ सुनाएंगे, मुख भी कुछ सुनाएगा, आंखें भी कुछ सुनाएंगी, पर अब डाडो शरीर छोड़ दिया, कर्म इंद्रिया भी शांत, तो उस समय आप देखेंगे ये हिलते जुलते नहीं है। वो जो अपने आईटी वालों ने ये एक्सपेरिमेंट किया था कि कितनी देर यानी संकल्प की लहर भी नहीं, चेहरे का भाव नहीं बदला, आंखें पलक झपकी नहीं, वो डेड साइलेंस है, यानी मतलब कर्म इंद्रियां जो मुझे खींच नहीं रही है, आकर्षण से परे हूं, पर आकर्षण से परे हूं, पर आकर्षण में आनंद ले रही हूं, सच्चिदानंद का सच्चा सच्चा सुख ले रही हूं। तो वो डीप साइलेंस भी है, फिर स्वीट साइलेंस भी है, फिर लवफुल साइलेंस भी है, और ब्लिसफुल साइलेंस भी है। पर जैसे एकदम शांत,
बहुत ही गहरा। मुझे लगता है कि ऐसा एक्सप्लेनेशन शायद अभी तक हमने कहीं नहीं सुना कि कैसे डीप साइलेंस क्या है, फिर वो डीप साइलेंस हमें कैसे स्वीट साइलेंस की ओर ले जाता है, और ये डेड साइलेंस अपनी कर्मेंद्रियों का कोई आकर्षण नहीं। सचमुच बहुत ही गहन और बहुत ही खूबसूरत एक्सप्लेनेशन दिया है दीदी आपने, और इसी की गहराई में हम सबको चलना है।
ये प्रैक्टिकल में जब अव्यक्त बाप दादा आते हैं तो वो जो बाबा की दृष्टि है, वो दृष्टि का वाइब्रेशंस, हजारों लोग बैठे हैं, उनके श्वास की आवाज भी नहीं आती, खांसी भी नहीं होती है, हिलना जुलना भी नहीं, एकदम नजर ऊपर, जैसे वो शरीर में होते भी डेड है। 30,000 बैठे या 20,000 बैठे है, कोई नहीं बैठा यहाँ पर।
बिल्कुल दीदी, हमें भी अब ऐसे ही बाबा की तरह ऐसी गहरी स्थिति बना करके ऐसी अनुभूति सभी को करना है, क्योंकि दीदी लक्ष्य ही यही था कि हम अपने डीप साइलेंस से कैसे ग्लोबल पीस लाएं, क्योंकि जब तक ये गहरी अनुभूति नहीं करेंगे तब तक विश्व शांति की बात नहीं की जा सकती। और डॉक्टर प्रताप भाई जी, आपके पास आना चाहूंगा कि बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, सभी अकाउंट से जुड़े हुए हैं, फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो एक प्रश्न है कि अपने डेडलाइंस के बीच, डेडलाइंस होते हैं कि आपको पूरा करना है, इन डेडलाइंस के बीच हम डेड साइलेंस या डीप साइलेंस की प्रैक्टिस के लिए कैसे समय चुराएं?
ओम शांति। वैसे तो हम सभी अनुभवी हैं कि साइलेंस से ही एकाग्रता बनती है, और अकाउंटिंग का काम तो एकाग्रता के बिना नहीं होता। तो जितना साइलेंस में रहते हैं, साइलेंस का अर्थ ये नहीं कि हम कम्युनिकेट नहीं करते, लेकिन हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, हमें कुछ पुल नहीं करता है। तो जब वो स्टेज होती है, मैं अगर आप देखें, आप सब में से ज्यादातर लोग गुलजार दादी से मिले हैं, दादी बहुत लंबी बात सुनती थी, लेकिन उनका उत्तर सिर्फ दो शब्दों में होता था। कभी कभी बहुत बार ऐसा होता था, मुझे याद है एक बार मैं बहुत थोड़ा हलचल में था, तो दादी के पास गया, दादी को बहुत कुछ सुनाया, दादी ने कहा अच्छा आप छोड़ना चाहते हो ना, आप सामान बनाओ फिर मेरे पास आना। तो इतना ही उत्तर दिया, मैंने आधा घंटा बोला होगा, दादी ने ये एक लाइन बोली। तो साइलेंस में वो जो एकाग्रता है, साइलेंस में जो स्ट्रेंथ है, क्योंकि एक दूसरी बात ये भी है कि जब भी हम कम्युनिकेट करते हैं किसी से भी, तो उस समय हमारी अपनी स्थिति रिफ्लेक्ट करती है। अगर हमारी, जैसे दीदी ने कहा, अगर हमारी स्थिति में डेप्थ है, हमारी स्थिति में स्वीटनेस है, तो हमारी कम्युनिकेशन बहुत ब्रीफ होगी, लंबी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारी अपनी स्थिति में द्वंद्व है, अपनी स्थिति में ही, जैसे हम लोग आपस में कभी कभी किसी बात में डिफर करते हैं, तो हमें कितना एक्सप्लेन करना पड़ता है। लेकिन अगर हम कनेक्टेड रहते हैं, और हम सबकी जो आपस में अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, तो उसमें कुछ शब्द नहीं बोलने पड़ते। तो हमारी जो स्टेबिलिटी है वो साइलेंस से ही है। दूसरा, मैंने जगदीश भाई को बहुत बार देखा, उनके साथ ट्रेवल भी किया। अब जगदीश भाई हमें लगता था कि बहुत सीरियस हैं, पर जब आप उनसे बात करते थे, वो इतने प्रेम से, इतने स्नेह से बात करते थे, हर छोटी बात का ध्यान रखते थे। मुझे याद है जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती थी, वो कॉन्फ्रेंस के लिए ब्रीफ बनाते थे, विषय पे, टॉपिक पे, और वो ब्रीफ बहुत छोटा होता था लेकिन उसमें रहस्य बहुत कुछ छुपे होते थे। तो साइलेंस का अर्थ ही ये है कि हम अपनी स्ट्रेंथ जमा कर रहे हैं, हम अपनी ताकत जमा कर रहे हैं, जो भी कार्य करें, चाहे अकाउंटेंसी है या मेडिसिन है या यज्ञ का कारोबार भी है, सब में एकाग्रता तो चाहिए। तो मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूं कि साइलेंस में बहुत मजा है, आप खुद भी काम करते हैं और दूसरों से भी सेवा ले सकते हैं साइलेंस से। और इसमें साइलेंस में जो रिस्पेक्ट है, जो साइलेंस में एक दूसरे की कंसिडरेशन है, वो भी नजर आती है। अगर आप किसी को कोई उसकी बात को डिसएग्री करते हैं और काटते हैं तो आपको लंबा बोलना पड़ता है, लेकिन अगर आप किसी की बात को रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो आपको कम बोलना पड़ेगा। तो इसलिए साइलेंस तो अपने आप हो जाती है, उसके साथ बहुत कुछ समाया हुआ है। अभी जैसे ये जो वॉल्केनिक, ये जो ज्वालामुखी योग की बात चल रही है, अभी मैं सोच रहा था, देखो हम सोचते शायद वो बैठ के करना पड़ेगा, कल जैसे उसका जो मेन पॉइंट था विश्व कल्याणकारी था, आज था मास्टर सर्वशक्तिमान। तो स्ट्रेंथ ही है ना, बेनोवेलेंस है या हम विघ्न विनाशक बनते हैं, उसमें हमारी स्ट्रेंथ है। तो जितनी हमारी स्ट्रेंथ होगी, साइलेंस तो स्वतः ही हो जाएगी।
बिल्कुल, मतलब अपनी स्थिति हम वैसी बना करके रखें तो बिल्कुल सार गर्भित हमारा उत्तर भी होगा और हमारे पास समय भी बहुत बच जाएगा। कई बार हम सोचते हैं कि कैसे इसे हम ठीक करें। गोकुल भाई जी, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती हैं जीवन में, या बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो हमें अशांत करने वाले होते हैं, अशांति वाली बातें लेकर के आते हैं। आपके पास भी ऐसे बहुत आते रहे होंगे, आते भी हैं। तो जब ऐसे लोग आते हैं जो पर्पजली कई बार आते हैं, या कई बार अपने संस्कार वश भी जो अशांति लिए हुए आते हैं, तो ऐसे में आप अपने पास क्या संकल्प रखते हैं कि उस व्यक्ति की, उस परिस्थिति की जो अशांत करने वाली है, स्थिति में मैं अपने आप को शांत रखूं, क्या संकल्प और अभ्यास आप रखते हैं?
ओम शांति, ओम शांति। मेरा व्यक्तिगत रूप से कोई अभ्यास मैं नहीं करता हूं। मैंने एक सिद्धांत बना के रखा है, चैलेंज करके रखा है कि कोई आए और मेरे को डिस्टर्ब करके दिखा दे। ये जो सिद्धांत है ना, ये सिद्धांत से कोई मेरे को विचलित कर दे, मैं उनको प्राइज दूंगा। कभी भी डिस्टर्ब कोई कर ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं बाबा के साथ हूं और बाबा जहां पर उपस्थित है वहां तो मन हलचल होने की कोई सवाल ही नहीं है। हाँ, परिस्थितियां आती है, भाई बहन आते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के कारोबार होने के कारण बहुत सारे बातों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जब भी कोई बातें ऐसी आती है, डिस्टर्ब व्यक्तियों से नहीं होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं क्या है, होते तो नहीं है, डिस्टर्ब किस बात की होती है कि कोई चीज की आवश्यकता है और उसकी पूर्ति नहीं हो रही है। मान लो आपकी डिमांड ज्यादा है लेकिन वो डिमांड को हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उस परिस्थिति में थोड़ा बहुत मन में कुछ बातें चलती है। लेकिन सच बताऊं, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं, कोई ये थ्योरी की बात नहीं है। मान लीजिए फाइनेंस की कोई कहीं कमी हुई, कुछ भी हुआ, हमारी मिली बहन यहां होगी, बाहर गई है, मैं आपको सच बता रहा हूं, ये चेकबुक और ये सारी लेके ना बाबा के सामने रख देते हैं, बाबा इस चीज की कमी है, क्या करें?
ये प्रैक्टिकल चीज है, कोई थ्योरी नहीं है। मान लीजिए फंड्स नहीं है, आपको खर्च करना है, आप कहां से खर्च करेंगे? पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? जहां फंड्स नहीं है आप खर्च करेंगे? तो बाबा के सामने रख देते हैं, बाबा आप बताइए हम कहां से क्या करें, किस प्रकार से मैनेज करें। वंडरफुल, कुछ समय के बाद वो चीज बाबा पूरा कर देता है। वंडरफुल, या मैं अनुभव से बता रहा हूं ये चीज। जैसे आपने सुना होगा कि बेगरी पाट में यज्ञ में कुछ था नहीं, लेकिन जब बाबा को बोला गया कि बाबा कैसे चलाएं रोटी के लिए, तो आटा नहीं है, तो बाबा बोला निश्चिंत रहो ना। फिर मनियाडर आया तो फिर बाबा का यज्ञ का फिर भंडारा चला। इसी तरह से यही फॉर्मूला मैं अपनाता हूं, सर्च बता रहा हूं। दिस इज द फॉर्मूला कि बाबा कैसे चलाना है। बाबा जैसे पास बैठा है, पूछता हूं बाबा ये करें, बाबा ये करें, बाबा ये करें, तो अवस्था कभी भी आपका हलचल नहीं होगा। तुरंत बाबा जैसे जवाब दे देता है, बच्चे ऐसे करो ना, क्यों चिंता कर रहे हो, ऐसे करो ना, क्यों चिंता कर रहे हो। ये प्रैक्टिकल अनुभव से मैं कह रहा हूं। और सबसे बड़ी चीज है, जब भी आज तो दादी दीदियां भले हमारे साथ नहीं है, सूक्ष्म रूप से हैं, हम नहीं कहेंगे कि नहीं है, आज भी एडवांस पार्टी में जो भी दादी दीदियां जो भी है सब हमारे साथ अभी भी यहां हमारे साथ मौजूद है, उपस्थित है। उनकी प्रेरणा लेके भी हम काम कर रहे हैं। प्रेरणा उनकी है, कर्म हमारी है। सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं चलता है, बातें सुनने से काम नहीं चलता है, कर्म तो हमको करना पड़ेगा। तो भले नहीं है, जैसे बड़े होते हैं तो निश्चिंत हो जाते हैं ना, बड़े होते हैं तो भाई चलो बड़े बैठे हैं सब कुछ करेंगे, लेकिन समय बदल जाता है, सब कुछ करना पड़ेगा, तो फिर अपनी अवस्था अपनी स्थिति को भी उस हिसाब से, अगर आप उस परिस्थिति के हिसाब से नहीं ढालेंगे तो फिर आपको परिस्थितियां बोझ जैसे लगेगी, भारीपन महसूस होगा। तो ये भारीपन हमारे में नहीं है, इसलिए क्योंकि हम निश्चिंत इसलिए है, एक तो अभी ट्रस्टीपन की भाव से भी परे हैं। पहले सोचते थे कि हम ट्रस्टी हैं, बाबा का निमित्त बन के सेवा कर रहे हैं, नहीं, वो भाव भी एक प्रकार की अभिमान की भाव है। मैं ट्रस्टी हूं, मेरे को कभी कभी मैं महसूस कर रहा हूं, ये भी एक सूक्ष्म रूप से एक अभिमान का एक रूप है। मैं ट्रस्टी भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं, करण करावन हर बाबा है, जो कुछ बाबा कहेगा उतना ही करूंगा। और बाबा समय प्रति समय ये प्रेरणाएं देता है, जैसे कि साथ में बाबा बैठ के, यहां बैठा है बाबा मेरे पास, ये अनुभव होता है। बाबा को मैं आह्वान करता हूं, बाबा आप आइए ना, आज ये सेवाएं हैं। बाबा को बताता हूं लिस्ट बना के, बाबा आज ये सेवाएं हैं करना है। जैसे बाबा साथ ही बैठा रहता है, अनुभव कर, जैसे आपके पास कोई बैठा है, आप अनुभव कर रहे हैं मेरे साथ ये बैठे हैं, अनुभव कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठे हैं, इसी प्रकार की फीलिंग, प्रैक्टिकल फीलिंग कि बाबा मेरे साथ बैठा है, मेरे बाजू में यहां बैठा है, बाबा देख रहा है मेरा हर कर्तव्य हर कर्म, बाबा देख रहा है। मैं क्या करूं, कैसी करूं, कैसी स्थिति होगी उस समय आपको, अगर बाबा आप विजन से देखिए कि बाबा मेरे पास यहां बैठा है, जैसे मैं कह रहा हूं डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे हैं, अब यहां बाबा बैठा है तो कैसी कर्म होगा, कैसी आपकी स्थिति, कैसी फीलिंग होगी उस समय की आपकी, कोई स्वरूप आपके सामने बाबा से बना बैठा है प्रैक्टिकली, तो कैसी आपको महसूस कैसा होगा, एकदम माने
हो जाएंगे,
क्या कहूं उस चीज को एक्सप्लेन करना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। जैसे आपने सुना कि कल वो शारदा बहन सुना रही थी कि जब बाबा मम्मा जब बाबा के पास जाती थी तो मम्मा कभी भी कुछ नहीं बोलती थी, मम्मा बाबा जो कहते थे बाबा हाँ जी बाबा, तो ये सबसे पावरफुल जो वर्ड है, हाँ जी शब्द जो है उसको अगर अपना लो, तो हर बात में सफलता मिलेगी, हर प्रकार से आपकी स्थिति अच्छी रहेगी, कभी भी हलचल नहीं होगा। हाँ, बात यह है, इस चीज को इतना सरल भी नहीं है जो हाँ जी कह के हर चीज को हम डाइजेस्ट कर सके। हाँ जी कह के हर चीज को आप सरल रीति से ले लो, अपने मन को इतना स्थिर रख लो, वो भी सहज नहीं है, हलचल होगी। लेकिन जैसे कहते हैं कि पानी की मार से पत्थर भी चिकन हो, क्या कहते हैं, नरम चिकना हो जाता है, या आप कहते हैं कि हथौड़ा लगने से मूर्ति भी बनते हैं, पत्थर की मूर्ति बनते हैं, इसी तरह से ये बातें वातावरण आएंगी, लेकिन इसको अगर हम पॉजिटिव रूप से लेंगे तो अवस्था एकदम मजबूत रहेगा। और एक जीवन की कोई ना कोई बात को अगर सिद्धांत बना लेते हैं तो सिद्धांत से कहीं हटना ये कभी हो नहीं सकता है, क्योंकि बाबा जब साथ है, बाबा ने जब हमको इतना दूर तक ले आया, और बाबा ही ले जाएगा, बाबा ही हमको चुन के लाया ना, चुना किसने चुना है। मैंने देखा, प्रैक्टिकल कह रहा हूं, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि दादी दीदियों के पास हम बातें लेके जाते हैं, मैं भी कई बार ऐसे दादियों के पास बातें लेके गया, दादी आप तो इतनी बड़ी अथॉरिटी है, आप तो सब कुछ कर सकते हैं, कई बातें कई परिस्थिति आती है तो दादी दीदियों के पास बात देना पड़ता है। मेरे को, मैं एक बार यशु दादी का ऑफिस आपने देखा होगा, दादी का सोफा ऐसे पड़ा है, दादी बैठी थी, मैं गया बात किया, तो क्या समझते हो कहने से सुधर जाएंगे, दादी मेरे को बोल रही है, आप क्या समझते हो मैं इनको कहूं तो सुधर जाएंगे? कोई नहीं सुधरेगा, सिर्फ शुभ भावना शुभकामना रखेंगे तो उनमें वो परिवर्तन आएगा, उनकी विशेषताओं को देखेंगे तो उनमें वो परिवर्तन आएगा। बड़ी दादी मेरे को ऐसे बोल रही है।
बहुत बहुत शुक्रिया भ्रता जी, क्या डीप सीक्रेट हमारे सामने भाई साहब ने रखा है, राइट? एक बार जोरदार तालियां तो बजाएं, अनुभव युक्त गहनी बातें, कि चैलेंज चैलेंज सबसे सुंदर बात। और जैसे उन्होंने चैलेंज कहा, दीदी ने माइक उठा लिया था। दीदी
मेरे को ये था, अंगद भाई है, अंगद नाम है।
एक बार तालियां।
ब्राह्मण को भी पैर हिलाने आया तो ब्राह्मण को भी झुका लिया, तो ऐसे आप अंगद नाम है, नाम अंगद है।
बिल्कुल दीदी, बहुत सुंदर प्रेरणा। यदि हम चैलेंज करें, ये चैलेंज क्या कि कोई करके दिखाए मुझे, आसान हलचल में ला के दिखाए, उनको इनाम देंगे, राइट? और बाबा बैठे हैं तो बाबा का वो स्लोगन तो हमेशा हम सबके घर में है, हम सबकी डायरी में है, कि तुम चिंता मत करो मैं बैठा हुआ हूं। लेकिन प्रैक्टिकली उसे यूज करना, पूरी खाली अपनी जो भी चेकबुक है उसे बाबा के सामने रख देना कि अब बाबा क्या करना है।
मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूं, मैंने दादी दीदियों को देखा है, उन्होंने अपने अधिकार से बाबा को कैसे यूज किया। क्यों, दादी जानकी कहती थी, बाबा अगर आप हमको यूज करते हैं तो हमारा भी अधिकार है आपको यूज करने के लिए, आपको इतने अच्छे बच्चे मिलेंगे कहाँ। दादी जानकी कहती थी, आपको हमारे जैसे इतने अच्छे बच्चे कहाँ मिलेंगे। तो वो भी अधिकार से बाबा को यूज करते थे, क्योंकि मैंने देखा ये जो जितने सारी कारोबार आप देख रहे हैं ये जैसे कि मिरेकल है, जैसे कि कोई असंभव चीज संभव हुआ है। क्योंकि जिस समय मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्रवेश किया उस समय तो कुछ था ही नहीं, सिर्फ मधुबन ही था, बाद में तो फिर ये ज्ञान सरोवर, शांतिवन, मनमोहिनी, जो भी ट्रेनिंग सेंटर जो कुछ बना सब कुछ बना, या मानसरोवर। जिस समय हमारे माने यज्ञ में फंड्स भी नहीं थे, यज्ञ में फंड्स भी नहीं थे इतना सारी चीजें बनाने के लिए, और दादी दीदियां इतना निश्चिंत है बाबा के ऊपर। मेरे को दादी कहती है, देखते हो ये पगड़ी वाला बाबा एक बोला है ना, मेरे को सब बना के देगा। आप बताओ कौन इतना निश्चिंत हो सकता है, कितना उनका बाबा के साथ माने, कितना बाबा को अधिकार के रूप से बाबा को कहते थे। मैंने बड़ी दादी को ये चीज देखा, जब भी चाहे गुलजार बाबा को बुलाओ ना, बाबा आ जाते थे, बाबा से कुछ न कुछ प्रेरणाएं ले लेते थे, बाबा कुछ न कुछ डायरेक्शन दे देता था, सब काम बड़े सरल रीति से हो जाता था। तो इसी तरह से अगर बाबा हमारे साथ है, बाबा से हम काम कराएंगे, ये फॉर्मूला आना चाहिए कि बाबा को हम कैसे अधिकार से बाबा को कहें, और उसके लिए इतनी क्या कहते हैं सरलता चाहिए या मासूमियत चाहिए, साफ दिल चाहिए, तब जाके बाबा को हम अपना बना।
बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आपने बिल्कुल सही बात कही है, जितना भोलापन जितनी मासूमियत उतना भोलानाथ बाबा प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये चीज जरूर लेके जाइएगा कि हम भगवान को कैसे यूज करें, राइट। उन्होंने खुद ऑफर किया है कि तुम मुझे यूज करो, मैं खाली बैठा हुआ हूँ। गोकुल भाई जी इसके कितने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हैं कि कैसे बाबा को साथ बिठा करके उनसे कार्य करा लेते हैं अधिकार से। दीदी चूंकि साइलेंस शक्ति की बात हो रही है, चले साइलेंस में 3 मिनट। दीदी साइलेंस की शक्ति जो बाबा कहते हैं, और बहुत बड़ी और बहुत विशेष बातें बाबा ने कही है इससे जुड़ी हुई, कि साइलेंस की शक्ति से तुम असंभव को संभव कर सकते हो, भटकती आत्माओं को ठिकाना दे सकते हो, दूर बैठी आत्माओं को संदेश दे सकते हो, बहुत बड़ी बातें। आपने अपने जीवन में साइलेंस की शक्ति का कहाँ प्रयोग किया है, कैसे प्रयोग किया है, उसका थोड़ा अनुभव। और हम जब फिनांस प्रोफेशन में हैं तो हम इस शक्ति का कैसे अपने प्रोफेशन में यूज कर सकते हैं या प्रयोग कर सकते हैं।
साइलेंस वास्तव में जैसे बताया कि सिचुएशंस में डिससैटिस्फैक्शन है, असंतुष्टता है, और आत्मा को जो चाहिए वास्तव में वस्तुओं की बात नहीं है, परंतु वो उस समय उनके जो उन्होंने चाहा स्वमान को इस अभिमान से कहें या अपमान वश कहें या इच्छा वश कहें, तो वो जो डिमांड है अभी डिससैटिस्फैक्शन है, क्यों इतनी सारी अशांति संसार में क्यों हुई, हर चीज को मिसयूज किया है, और जब मिसयूज किया है तो नेचुरली वो डिससैटिस्फैक्शन होगी जरूर। अपने कर्म इंद्रियों को भी अशांति आई कैसे, हमारे जीवन में अशांति अब भी अगर अशांति होती है तो जरूर मुझे कुछ चाहिए, वो चाहिए पूरी नहीं होती है तो अशांति होती है, यानी व्यर्थ चिंतन चलता है, दोष दर्शन शुरू हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति पहले इंडिविजुअल रीति से, मतलब जिन व्यक्तियों के साथ जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनका स्वभाव, तो स्वभाव में मुझे भाव को परख करके देख करके, अगर मैं इस समय वो पूरा कर भी नहीं सकती हूँ तो आर्ग्यू नहीं करूं, आर्ग्यू करने से या उनको कन्विंस नहीं करूं, कन्विंस करने से भी वो कोई मानेंगे नहीं और आर्ग्यूमेंट बढ़ेगा। तो एक होता है इंडिविजुअल लेवल पर वातावरण में जो अशांति फैली है उसको शांति मिलाना, और आज जो इंडिविजुअल ही धीरे धीरे सब जगह वातावरण बनाते हैं, तो अभी हमको मालूम है टोटल तो आंसर यही है, अहंकार और लोभ, अहंकार वश कि मैं सबसे बड़ा हूं, तो दूसरे को अपनी शक्ति को मिसयूज कर करके विश्व में अशांति फैलाई। चाहिए किसी को, अब ये तो पता है हम सबको मरना है, आज की दुनिया के हिसाब से जब हम वर्ल्ड पीस कह रहे हैं तो वर्ल्ड पीस वार बंद हो जावे, हमारी भाव से तो पता है कि वार होनी है जरूर, हमारा सोच ही अलग है, समझ ही अलग है, और मनुष्य को भी, मनुष्यों को क्या है कि हमारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, हमारा परिवार खत्म हो जाएगा, हम खत्म हो जाएंगे। सत्यता का पता नहीं है। तो जो भी चीजें इमर्ज हुई हैं वो खत्म होनी है जरूर, हमको अगर बेहद के ख्याल से देखे तो शांति, विश्व शांति पैदा पहुंचानी है तो शांति का सोर्स कौन सा है? तो परमपिता परमात्मा कोई भी चीज को मिसयूज नहीं करता, बेनेवोलेंट है, हर शक्ति को राइट रीति से यूज करता है। हमारे को भी बार बार ध्यान खिंचाता है, समय को ठीक यूज करो, संकल्प को ठीक यूज करो। तो रिजल्ट क्या है? मिसयूज। और हम अपनी शक्तियों को जब गवर्नमेंट से लेकर अथॉरिटी से लेकर सब चीजें मिसयूज होती है, और जितना जितना मिसयूज हुआ है उतना हम जरूर है मिसफॉर्चुनेट होते जा रहे हैं, अशांति बढ़ती चली जा रही है। तो फिर से वही वाली बात है कि हम सब आत्माओं को आध्यात्मिकता को बढ़ाना होगा। घूम फिर करके तो वही आता है ना, मांगते किससे शांति है? परमात्मा से, जो बोलता नहीं है, बिंदु ही है। अच्छा, तो परमात्मा मुख से तो बोलता नहीं है, और याद करते हैं तो भी हमको राम 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 कह के नहीं याद करना है, बोल के शांत नहीं करना है। तो हम कोई प्रोग्राम बना करके शांति करें, बड़े प्रोजेक्ट बना के शांति करें, वो नहीं है। फिर आ जाती है बात, एक्चुअली मन में अशांति में मैं शांत रहूं। दूसरा अशांत है उसको धीरज नहीं है, उनकी एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं हो रही है, उनकी अपनी कोई पर्सनल स्वार्थ है वो पूरा नहीं हो रहा है। तो हमको ये तो मालूम है सारी दुनिया में ये सब कारण अशांति के क्या है, तो हम उस कारण का निवारण शब्दों में नहीं देंगे, फिर भी आध्यात्मिकता की ओर ध्यान खिंचाएंगे ना। तो मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर की संतान हूँ, शांति धाम की रहने वाली हूँ, शांति धाम में वापस जाना है। पर हमको फिर ज्ञान है, इसीलिए हम यूज करते हैं ज्ञान को।
बिल्कुल दीदी, मतलब हम इसका इस्तेमाल करें, जो भी अशांत करने वाली चीजों हैं उनको, उनसे दूर रहते हुए अपनी शांति की स्थिति में हम रहें। ये प्रयोग तब हम तभी कर पाएंगे जब ये बल हमारे अंदर जमा होगा। डॉक्टर प्रताप जी,
और एक ज्ञान भी है तो हम दूसरी आत्माओं को समय पर थोड़ा ज्ञान दे सकते हैं, लिमिटेड समय। यानी कि कोई ने शरीर छोड़ दिया, अब उस समय ये तो बहुत सारी परिस्थितियां आई हैं कि किसी के हस्बैंड ने शरीर छोड़ा, बच्चे ने शरीर छोड़ा, कितने घर में अशांति हो गई। पहले प्रैक्टिकल रूप में एक पर्सनल अशांति है, एक अशांति में शांति देना है। तो लंदन में हमको वीजा इसी हिसाब से मिला कि हमने ये शांति का काम करके दिखाया। कोई मतलब हम प्रीस्ट है, अशांत को शांत कर रहे हैं। मानो कोई ने शरीर छोड़ा, अब शरीर छोड़ा तो वो दुखी हैं, तो हम उनको समझाते हैं कि आपका रिश्ता किसके साथ था? हस्बैंड के साथ था, तो वो तो अपने आप वो तो नहीं गया जिसको आपने हस्बैंड माना। शरीर के साथ था या आत्मा के साथ था? शरीर को रख लेते ना, क्यों जला दिया, क्यों दफना दिया? तो पहले ये सोचो कि आपको अशांत क्या कर रहा है। जो जो था वो अभी नहीं है, इसलिए अशांति है, और जब था तो पहचाना नहीं, यूज नहीं किया उसको। इसीलिए आत्मा को शांति देनी है तो चार चीज ही तो चेंज हुई है। ड्रेस चेंज कर ली, एड्रेस चेंज कर लिया कि आप उसका पीछा ना करो।
मतलब तंग आ गया था वो, इसलिए एड्रेस चेंज कर लिया।
एड्रेस भी चेंज कर लिया, और अगर शांति भी देनी है तो सेंट्रल ऑफिस से कनेक्शन रखो, ताकि कुछ भेजो भी सही तो उनके थ्रू भेजो। और तीसरी बात समझ लो कि ये ड्रामा है, उसका रोल चेंज हुआ है। चौथी बात है वो बड़ा विशेष था, उसको नई जॉब मिल गई है नई कंपनी।
बहुत सुंदर, कितनी सुंदर बातें हैं जो व्यक्ति को कितनी शांत, हम इन बातों को लोगों को भी साझा कर सकते हैं ताकि उनका चित्त और मन शांत हो। बहुत बहुत शुक्रिया दीदी।
मतलब कहने का मतलब है कहाँ ज्ञान दे के शांति, कहाँ प्रेम की भावना सिंपति दिखा के शांति, कहाँ प्रैक्टिकल में मेडिटेशन करके शांति। अलग अलग तरीके बाबा ने सिखाए हैं, तो इस हिसाब से शांति,
तो इस रूप में हम शांति की शक्ति का, याद की शक्ति का अलग अलग परिस्थितियों में यूज करें, क्योंकि जितना प्रयोग करेंगे उतने ही अनुभवी बनते जाएंगे, और लक्ष्य है हमारा विश्व शांति का। डॉक्टर प्रताप जी, आपसे प्रश्न है कि ये जो ग्लोबल पीस की बात हम करते हैं, तो हमारा डीप साइलेंस या हमारा साइलेंस इसमें कैसे भूमिका अदा करता है? क्या कोई साइंटिफिक ऐसे तथ्य हैं जिनके बेस पे हम इन बातों को औरों तक भी पहुंचा सकें, या हम खुद भी समझ सकें कि हमारी शांति, हमारी मानसिक शांति ग्लोबल पीस की वजह बनती है, इसीलिए व्यक्तिगत रूप से हम सबको इसकी ओर बढ़ने की जरूरत है।
ऐसा है कि सिंपल है, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जब हम यहाँ मेडिटेशन में बैठते हैं उसके वाइब्रेशंस हम फील करते हैं, और ऐसे ही कलेक्टिव रूप में जब हम बैठते हैं उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। हम जब इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं, जब थर्ड संडे को हम बाबा को याद करते हैं, तो वातावरण में वो वाइब्रेशंस तो रहती हैं, वो तो इंडेस्ट्रक्टिबल है, एनर्जी है। वैसे भी यूएन के चार्टर में ये लिखा हुआ है कि वॉर्स बिगिन इन द माइंड्स ऑफ पीपल, तो पीस भी तो वहीं से शुरू होगी। तो हम सब जो कर रहे हैं, भले ही आज किसी को रिजल्ट नहीं नजर आ, लेकिन वो एनर्जी तो स्प्रेड हो रही है, वो एनर्जी तो इंडेस्ट्रक्टिबल है, वो एनर्जी हर जगह पहुंच रही है। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है, हम उस सिचुएशन में किसी को कर्स भी कर सकते हैं, किसी को ब्लेम भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं, हम उनको गुड विशेस देते हैं, हम उनके लिए प्योर फीलिंग्स रखते हैं कि देखिए इनको भी अपना रोल प्ले करना है। जो रेस्टलेसनेस क्रिएट कर रहे हैं या वॉर क्रिएट कर रहे हैं, उनका भी रोल है। हमें तो बाबा ने निश्चिंत कर दिया है ना, कि हमें पता है भावी क्या है, ये सब कुछ तो होना ही है।
बिल्कुल, मतलब ये वातावरण को और विश्व को शांति प्रदान करता है, ये बात हम अपने अनुभव से कह सकते हैं और उन्हें अनुभव करा भी सकते हैं।
और वैसे भी देखिए, ये तो अभी छोटे रूप में तो ये देखा गया है कि अगर आप मान लीजिए कहीं कोने में भी बैठ के किसी के लिए प्रेयर्स कर रहे हैं या गुड विशेस दे रहे हैं, तो उस तक पहुंचती है।
जी,
इंडिविजुअल तक पहुंचती है तो कलेक्टिव भी पहुंचेंगी।
पहुंचेंगी, वैसे भी डॉक्टर को कहते ही हैं कि अब दुआ कीजिए, हमने अपना काम कर दिया है, तो दुआओं का हर जगह महत्व है।
बिल्कुल, ये तो हमें पर्सनल अनुभव, ये तो डॉक्टर्स ने तो यहाँ तक स्टडी किया है रिसर्च में, जिसको हम इंटरसेसरी प्रेयर कहते हैं, कि आप दूर बैठे किसी पेशेंट के लिए प्रेयर कर रहे हैं, तो उसको क्रिटिकल केयर में तो उसका प्रभाव वहाँ नजर आता है देखने में। तो छोटे रूप में तो पता, बड़े रूप में तो जब वो ये जो हम सब कार्य कर रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय कलेक्टिवली कार्य कर रहा है, जब शुरू हुआ था तो कितना छोटा था, उसका परिवर्तन तो जरूर आता है। लोग एक्सेप्ट करते हैं अब कि सच्ची शांति जो मिलेगी वो ऑनेस्टी से मिलेगी, वैल्यूज से मिलेगी, और जीवन में परिवर्तन लाने से मिलेगी, ये तो आप सब एक्सेप्ट करते हैं।
बिल्कुल व्रता जी, एक चीज इससे जुड़ी हुई और है, जब हम शांति का अभ्यास करते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, या स्पिरिचुअल हम एक लाइफ फॉलो करना शुरू करते हैं, तो कई लोग हमारी सहनशीलता को, हमारे साइलेंस को हमारी कमजोरी समझते हैं, हमारी कायरता समझते हैं, तो यहाँ हम कैसे स्वमान का अभ्यास करें या कैसी स्थिति रखें जो उन्हें हमारी ये सहनशीलता और साइलेंस कमजोरी या कायरता फील ना हो?
देखिए, पेशेंस हमेशा जो स्ट्रांग व्यक्ति है वही रख सकता है। धीरज रखना जीवन में, वो धीरज हम तभी रख पाते हैं जब अंदर से हम स्टेबल होते हैं। तो इसलिए ये तो ये है कि लाइफ में भी आप देखें कि आपको बहुत सी सिचुएशंस आती हैं। एक बार मैं जब चंडीगढ़ के हॉस्पिटल में काम करता था, एक यंग लड़का बस में चढ़ा और वो ही ड्रॉप्ड, तो लोग घबरा गए इतने, तो वो हॉस्पिटल लाने के बजाय उसको पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन जब तक हमारे पास आया तो ही वॉज ऑलरेडी डेड। तो भी हमने बहुत कोशिश की और अपने सहयोगी डॉक्टर्स को बुलाया। अब उसके बाद थोड़ी देर के बाद, एक दो घंटे के बाद उसके रिलेटिव्स आए, तो उन्होंने तो इतना शोर मचाया, इतनी एब्यूजिव लैंग्वेज यूज की और कहा कि आप नहीं इलाज कर सकते थे तो बड़े हॉस्पिटल में भेज देते, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ हमने सुना। लेकिन दो तीन दिन के बाद जब उनको सारी रियलिटी मालूम पड़ी तो फिर वो क्षमा मांगने के लिए आए। धीरज तो बहुत रखना पड़ता है, और धीरज से ये है कि आप अपनी एनर्जी तो रखते हैं अपने पास, अपनी एनर्जी तो नहीं लूज करते हैं। आप कोई मान लीजिए आपको कोई ऐसी बात कह रहा है जो अनप्लेजेंट है, जो मे बी ट्रूथफुल भी नहीं है, और आप उसको सुन रहे हैं आराम से, वो पहले तो हम अपनी एनर्जी सेव कर रहे हैं, अपनी शक्ति सेव कर रहे हैं। और दूसरा है, बाबा ने ये तो बताया है कि हमारी जो गुड विशेस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं, वो लोगों तक पहुंचती हैं, आज नहीं तो कल वो रंग दिखाती हैं। इसलिए हमें अपने कार्य में जो है उसमें हमें संदेह नहीं होना चाहिए। कभी कभी हम अपने पे डाउट करने लग जाते हैं, जैसे आपने कहा ना, हम समझते हैं कि लोग हमें कमजोर समझेंगे, ऐसा तो हम अपने आप पे डाउट कर रहे हैं। अगर हम अपने स्वमान में रहते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में रहते हैं, तो हमें वो हलचल नहीं होगी। तो इसलिए हमें अपने सेल्फ रिस्पेक्ट में रह के, अपने स्वमान में रह के, अपने अपने आप को समझ कर चलते हैं तो कुछ भी मुश्किल नहीं होगा।
बिल्कुल, मतलब हैं अपने स्थिति में है तो फाइनली वो हमारे सामने झुकते ही हैं और इस चीज को महसूस करते हैं। गोकुल भाई जी, एक प्रश्न आपके लिए कि अपनी वर्क लाइफ, अपनी प्रोफेशनल लाइफ और ईश्वरीय सेवा, दोनों के बीच संतुलन कैसे रखें? सार रूप में, वक्त भाग रहा है तो मैं चाहूंगा सार रूप में इसका उत्तर जरूर, क्योंकि सभी अपने फील्ड में हैं।
मैं सुना नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा
ब्रता जी? प्रश्न है कि अपने प्रोफेशनल लाइफ और अपनी ईश्वरीय सेवा, दोनों का बैलेंस कैसे रखें, लौकिक अलौकिक का बैलेंस आप कह सकते हैं। तो सभी भाई यहाँ जो भी
सोचता हूँ, अभी जो भी प्रोफेशनल में है या लौकिक या अलौकिक, आप इसका डिस्टिंग्विश कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ अभी इन भाइयों में किसी में वो चीज नहीं होगा, लौकिक अलौकिक उनका एक ही होगा मैं सोचता हूँ। ना नहीं, बाबा ने ये सेवा दिया ना, लौकिक सेवा भी बाबा ने दिया, अलौकिक सेवा ने भी बाबा दिया। तो बाबा ने अगर ये दोनों सेवा हमको दिया तो इसको किसको कहेंगे लौकिक, किसको कहेंगे अलौकिक? जीवन जब अलौकिक हो गया, इसमें और लौकिकता कहाँ से आई? है लौकिकता? कोई लौकिकता नहीं, तो फिर बैलेंस हो गया ना भाई। सब अलौकिक। आप जिस स्थान पर बैठते वो भी सोचो कि ये बाबा का स्थान है। देखो हम कहाँ थे, मैं सच बताऊं, मैं कभी कभी सोचता हूँ जो लौकिक की बात आप कह रहे हैं, प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं। मैं लौकिक को जितना इग्नोर किया होगा, आप लोग यहां जो भी बैठे हैं भाई बहने, किसी ने इतना इग्नोर नहीं किया होगा। कभी आप ऐसे कर सकते हैं, जिस समय आपकी माता पिता या भाई बहने जिनको आपकी आवश्यकता हो और आप उनको इग्नोर करके घर छोड़ के आ जाओ, हो सकता है? कोई कर सकता है? दैट आई हैव डन। जब मेरे माता पिता भाई बंधु सबको मेरा आवश्यकता थी तो मैं घर को एकदम बिल्कुल, माने क्या कहूं, टोटली मुंह फेर के आ गया, देखा ही नहीं कि इनको क्या चीज की आवश्यकता है। फिर जब आ गया, अब सोच रहा हूं कि बाबा ने मेरे को कहां से लाके कहां बिठा दिया, और जिनको मैंने इग्नोर किया था बाबा ने उनका कभी परवरिश करेगा ये मेरे को कभी विश्वास नहीं था, क्योंकि मैं छोड़ के आ गया। क्योंकि मैं अगर नौकरी करता कहीं 20,000, 30,000, 50,000 कमाई करके उनकी परवरिश करता, लेकिन मैंने देखा कि मैंने इनको इग्नोर किया, ईश्वरीय सेवा में मैं आ गया, तो बाबा कैसे उनकी परवरिश किया। जब सेंटर खोला भाई बहन आए, इतने अलौकिक परिवार के भाई बहन उनकी परवरिश किया, मैं कभी सोच भी नहीं सकता हूं, ये स्वप्न है।
बिल्कुल, मतलब बाबा के लिए जब हम सब कुछ छोड़ते
हैं, जब बाबा के लिए आप सब कुछ कर लेते हो
तो भगवान उनका ध्यान रखते हैं।
भगवान बंधा हुआ है आपके लिए करने के लिए, क्योंकि मैं सच बता रहा हूं कि उनकी जो भाई बहन जो भी लौकिक सेंटर खोला भाई बहन आए, उनकी बीमारी, उनकी खाना पीना, उनका रहना, उनको ले, माय फादर वॉज ब्लाइंड, देख नहीं सकते थे रिटायर्ड के बाद, उनको एक चश्मे की जरूरत थी। भाई जो वहां की अपने गांव की भाई बहन जो बाजार में जाते होंगे, अरे कौन जा रहा है, हमारे लिए थोड़ा ये चीज ले आओगे, ये चीज हमारे लिए थोड़ा कर दोगे, यहां तक उन्होंने बाहर वालों के से मदद लिया। मैंने एक बार लौकिक परिवार में गया था, मैं आपको सुना देता हूं, ये बात मैंने किसी को सुनाया नहीं, प्रैक्टिकल बात सुना देता हूं। मेरे पिताजी मेरे को क्या बोलते हैं मालूम है, कि आपके जो ब्रह्मा कुमारी संस्था है उसमें कितने सारे भाई बहन हैं, कितने सारे भाई बहन बहनों को मदद करता है, आप मेरे को आत्मा समझ के भाई समझ के थोड़ी तो मदद कर दो, मेरे पिताजी मेरे को बोल रहे हैं। वो मेरे को ज्ञान दे रहे हैं मेरे पिताजी। फिर जब उनका ऐसी थोड़ी अवस्था ठीक नहीं थी तो उन्होंने मेरे को बुला के क्या बोलते हैं मालूम है, बहनों को बुलाना, इधर अच्छा आश्रम खोलना, उनको उनका माने उनको रहने के लिए स्थान देना, उनका देखभाल करना, वो मेरे को ज्ञान दे रहे हैं। मैंने लौकिक को इतना इग्नोर किया, तो मैं यही कह रहा हूँ लौकिक और अलौकिक कैसे एक हो जाता है, मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। लौकिकता अगर देखेंगे आप, ये लौकिक सेवा है ये अलौकिक सेवा है, ये डिफरेंस रखेंगे तो कभी भी पुरुषार्थ में आप माने क्या कहता हूँ कि उस मंजिल को पहुंच नहीं सकते हैं।
जी जी,
उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे, कोई लौकिकता नहीं है। लौकिक शब्द को बिल्कुल मिटा दीजिए, अलौकिक ही अलौकिक, जीवन अलौकिक, बाबा अलौकिक, अलौकिक क्या अलौकिक से भी ऊपर अभी पारलौकिक।
बहुत सुंदर, मतलब हम सब वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो बाबा का परिवार, पूरा विश्व हमारा परिवार, और लौकिक परिवार को एक तरफ रखते हुए आपने जो पूरे विश्व को एक परिवार मान करके त्याग किया, बाबा ने सबका ध्यान रखा। कहने का भाव यही कि जब हम भगवान के लिए सब कुछ करते हैं तो भगवान हमारे लिए सब कुछ करते हैं, और वो बैलेंस रखना हमारे लिए आसान हो जाता है, या कहें कि बैलेंस शब्द ही निकल जाता है जब हम एक भाव ले आते हैं कि सब हमारे अपने हैं और हर कार्य को हमें उसी भाव में स्थित होकर के करना है। दीदी बिल्कुल अंतिम प्रश्न मैं आपके सम्मुख रख रहा हूं, फिर सभी को ग्रुप फोटो के लिए स्टेज पर आना है। दीदी एक बात आई है कि हम कैसे लौकिक में रहते हुए, अपने जॉब में रहते हुए, कई प्रकार से हमें कई कंपनीज के साथ जुड़ करके उनके अकाउंट्स को देखना पड़ता है, या हम जिनके साथ जुड़े हुए हैं उनके साथ मिलकर के उनके अकाउंट्स को देखना होता है। तो मान लीजिए कुछ ऐसे हैं जैसे कुछ स्लॉटर हाउस हैं जहां पे मतलब क्या कहें कि बलि दी जाती है, या गाय भैंस बकरी इन सब की हत्या की जाती है, या नॉनवेज चैन वाले कई ऐसे होते हैं जो होटल्स आदि हैं, या लेदर मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ी हुई कंपनीज हैं। यदि ऐसे स्थानों का हमें अकाउंट्स के लिए हमें सेवा दी जाती है या हमें करना पड़ता है, तो क्या ये हमारी कार्मिक अकाउंट से जुड़ता है, हमारी स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ता है, वहां के लिए हम क्या करें, इस पर संक्षेप में आपका प्रकाश और आशीष चाहेंगे सबके लिए।
गीता में अर्जुन ने एक प्रश्न पूछा था, मतलब श्री कृष्ण के लिए बोलते हैं, तो वास्तव में उसमें ये कहा कि उस समय तुम वो जैसे अब बाबा कहते हैं ड्रामा में तुम पार्ट बजा रहे हो, कर्म का हिसाब किताब नहीं है, और अगर पार्ट बजा रहे हो तो उसमें भी ट्रस्टी होके बजाओ, वो तेरा पार्ट नहीं है, तो तुमने परंतु कुछ बराबर कोई पास्ट अब का कर्म नहीं है, पिछला कर्म का हिसाब किताब है, तो अब नया कर्म नहीं बनाओ, उसको सोच के तुम नया दुखी हो करके या तो कोई दूसरा मिलता है स्थान तो ढूंढो, अगर ड्रामा में यही मिला है स्थान और पूरा करना है तो फिर उससे परेशान होकर के नहीं करना है और उसमें कुछ स्वार्थ नहीं रखना है, फिर ये भी बात है, उसका फायदा नहीं उठाना है और उसमें वो ऐसा भी प्रभावित भी नहीं होना है, दोनों बातों में मतलब पार्ट है तो मैं पार्ट बजा रहा हूं, क्या कर्मों का खाता है मेरा, कैसा कर्म का हिसाब किताब है, तो वो तो कर्म का हिसाब किताब है तो चुप तो करना है, तो कैसे करूं, एक ड्रामा में सीन आया है, मैं बाबा को नहीं भूलूं इसमें, मैं अपने योग को नहीं भूलूं, और अब फिर जो है नेचुरली मेरे को अपने आप को सेफ रखना है, जब पैसे की जरूरत है और कहीं नहीं मिलता है, तो जैसे कोरोना के समय और डॉक्टर्स ने बच्चों की मदद की, कोई हिसाब किताब था क्या, परंतु स्वयं को सेफ रख करके फिर ऐसी भी सेवा की जो मुर्दों को उठाया, मुर्दों को जलाया, समय पर समझो जो पार्ट प्ले किया वो उस समय उस सीन से प्रभावित नहीं हो, साक्षी होकर के वो भी देखो और बाबा को साक्षी बना के रखो, तो ऑटोमेटिकली जल्दी हिसाब किताब खत्म होगा और जो दूसरी जगह जॉब मिल जाएगा, ये भी बात है, जल्दी खत्म हो जाएगा।
सुंदर दीदी,
ये जो प्रश्न पूछा, अभी देखिए हॉस्पिटल्स में कोई क्रिमिनल्स आते हैं, इंजर हो गए तो आप उनका इलाज करेंगे या नहीं करेंगे, आप इतने अब क्रिमिनल है वो, हो सकता है वो अपने संस्कार फिर से जाके दूसरा कोई क्राइम करेगा, पर लेकिन आपका रोल है हीलिंग का, आपका इलाज करने का है, ऐसे गांधी जी ने एक बार कहा था कि हॉस्पिटल्स आर प्लेसेस ऑफ सिन, वो इसलिए कहा था कि अब अल्कोहलिक है कोई, आप उसका इलाज कर देते हैं फिर वो अल्कोहल पीता है, या लाइफस्टाइल के बारे में नहीं बताते, तो ऐसे हमारी ये ड्यूटी बनती है, हम संसार में रहते हैं, हमारे जो भी संपर्क में आते हैं वो हमारी वाइब्रेशंस कैच करते हैं, समय प्रति समय हम उनको हम ईश्वरीय ज्ञान भी सुनाते हैं, हमारा रोल ही ऐसा है कि हम इस कलियुगी दुनिया में रह रहे हैं, कलियुगी लोगों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन उनको बाबा का परिचय भी दे रहे हैं।
बिल्कुल, एक बार जोरदार तालियां दीदी के लिए, भाता जी के लिए, गोकुल भाई जी के लिए, ये चर्चा चलती ही रहे, हम सब बहुत ज्ञान रत्नों से, अनुभवों के रत्नों से सजते रहें, ऐसी तो हमारी कामना है, लेकिन वक्त भी पंख लगा करके उड़ता चला जा रहा है, तो हृदय से शुक्रिया अदा करते हुए हम एक मिनट बाबा की याद में बैठकर दिल से बाबा को शुक्रिया अदा करेंगे, पश्चात फोटो सेशन है तो सभी लोग यहीं रहेंगे।